प्रथम पहर में, तो उस समय जुगनू लोग अपना चमक दमक दिखाने लगते हैं। खद्योता भांति ग्रहा न भांति, जिनमें अनंत प्रकाश है वे ग्रह नहीं चमकते हैं और जुगनू चमकते हैं। एक पाखंडी कथा कहने लगे तो पूरा बंबई उमड़ जाएगा, है कि नहीं? और ये देखने के लिए देखो देखो ये जुगनू कितना चमक रहा है, इसका प्रकाश 2 सेंटीमीटर में जा रहा है, कितना प्रकाश है, सारी दुनिया का काम होगा उसी प्रकाश में, जुगनू के प्रकाश से क्या होगा? ये लोग विचार नहीं करते हैं। इसीलिए इस सुखदेव गोस्वामी पापेन कह रहे हैं, जनता का मन पाप में रमा रहता है, इसलिए वो वेद मत को समझ नहीं पाते। इसमें है शिक्षा है, इस तरह से शोक प्रकट करते हुए कहते, वो वर्षा का वर्णन क्या कर रहे हैं वो इस तरह से उदाहरण दे देकर शिक्षा दे रहे हैं। वर्षा का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि वृंदावन में वर्षा काल आया है, फिर भी भगवान की लीला का वर्णन छोड़ करके यह आवश्यक शिक्षा सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। उन्हें भगवान कृष्ण की लीला का वर्णन करना है और वर्षा काल वृंदावन का वर्षा काल वो वर्णन कर रहे हैं, उनका मन ब्रज में है, फिर भी ये सब इतने पाखंड हो रहे हैं कि उनको ये बात याद आ गई। अच्छा, वर्षा काल में बादलों के गरजने पर मेढक बोलने लगते हैं अपने अपने स्वर में, और एक मेढक एक बेंग दूसरे बेंग की परवाह नहीं करता है, उसका जो भी कंठ है स्वर है भाषा है वो बे बे भे भे वो बोलते रहते हैं, इसलिए उसको भेक कहते हैं, भे भे करोती इति भेक, या बे बे गायती इति बेंग बेंग भोजपुरी में उसको बेंग कहते हैं, वो भी संस्कृत है। श्रुत्वा परजन्य निनदम मंडूका व्य सृजन गिरह, जब ही परजन्य निनद बादल गरजते हैं तब ही मंडूका मंडू मंडू करो करोती थी मंडूका, तो मंडूक बेंग को कहते हैं मेढक, ये लोग व्य सृजन गिरह बस अपना चालू कर देते हैं जो भी जानते हैं। ठीक वैसे ही इसमें उपाध्याय शिक्षा है, जैसे कुछ ब्रह्मचारी सोए रहते हैं गुरुकुल में ऋषि कुल में, लेकिन चुपचाप जब सोए रहते हैं तो आचार्य कहते हैं जगो, वे जगते हैं नहाते हैं धोते हैं और आचार्य कहते हैं पढ़ो, तो अपना अपना पाठ चालू कर देते हैं। इसको तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई वेद पढ़े जन बट समुदाय। ठीक, इसका कितना सुंदर अनुवाद किया है, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, मेढक बोल रहे हैं चारों ओर, कोई भागवत पढ़ रहा है कोई गीता बोल रहा है कोई हरे कृष्ण जप रहा है इसको वेद पढ़ना कहते हैं। सवेरे जप करना चाहिए अपने अपने स्वर में, सवेरे का काम है जप करना पाठ करना, तो मेढक बोलने लगते हैं, और एक मेढक ये नहीं सोचता है कि हमारी आवाज से दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है, वो अपना पाठ पूरा कर रहा है जो भी स्वर। तो सोए रहते हैं बच्चे और इसके बाद गुरुजी जगाते हैं और नहाते हैं और कहते हैं पढ़ो, बस पढ़ना चालू कर देते हैं। नियमात्य नियम के पूरा होने पर तुस्लिम सयाना प्राग, पहले तो चुपचाप बच्चे सोते हैं गुरुकुल में, ब्राह्मणा मतलब बटु ब्रह्मचारी, और नियमात्य शौच स्नान आदि करने के बाद वे मेढक के समान अपना वेद रटना चालू कर देते हैं। इस तरह पढ़ना चाहिए, वेद की बहुत जरूरत है, मतलब श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को रोज पढ़ना चाहिए, जीवन भर इसकी जरूरत है। अपना चालू करे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुपवा माम का पांडवा शैव किम कुर्वत संजय, पढ़ते 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 वो सब धारणा में आ जाएगी, लेकिन पढ़ना चाहिए, मौन नहीं पढ़ना चाहिए। आज के युग में लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन मौन पढ़ते रहते हैं, ट्रेन में भी अखबार बाजते रहते हैं, बहुत मौन पढ़ने की आदत है। मौन पढ़ने से शास्त्र की धारणा नहीं होती है, जितना ही उच्चारण करके पढ़ेंगे उतना ही वो जीवन में धारणित होगी, स्मृति में आएगी वो बातें। इसलिए यहाँ
मेढकों के बोलने के साथ 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 ब्रह्मचारियों के द्वारा वेद पाठ की तुलना की गई। प्रजन्य निनदम, बादल का गर्जना सुनकर के वे बोलने लगते हैं, उसी तरह से आचार्य की बात सुनकर, गुरु जी की बात सुनकर के बस पाठ चालू कर देते हैं। पाठ चालू हो बस चालू, अपना अपना पाठ, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, या जो भी कोई जप कर रहा है। सवेरे मेढक हो जाना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए, ये मेरे कहने का आशय है। पर बादल के गरजने पर मेढक जरूर बोलने लगते हैं। तो ऐसे ही जब घंटी बजे या अलार्म बजे बस जपता, और नियम आते हैं, नियम पूरा करके बस बोलना चालू करे। सवेरे का धर्म है बोलना, भगवत भजन, ट्रांसडेंटल साउंड, दिव्य शब्द बोलना चाहिए, बोलने का अभ्यास होना चाहिए। बहुत धीरे धीरे जप नहीं करना चाहिए, ठीक उच्चारण होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं क्या मन में जप करना ठीक नहीं है, ठीक है वो भी, लेकिन उससे दूसरों का हित नहीं होगा। बोलने से दूसरों का भी हित होता है और जिह्वा भी इंगेज्ड रहती है, तो जिह्वा को अवसर देना चाहिए, ये भी बोले, नहीं तो दिन भर बोलती रहेगी। और बातें बोलने में लोग नहीं ये सोचते हैं कि मन ही मन बोल ले, मन ही मन बात कर ले, उसके लिए बोलते हैं। और नाम जब करना होते तो कहते मन ही मन कर रहे हैं, मन में कर रहे हो क्या प्रमाण है? इसका कोई प्रमाण है नहीं कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं हम 2 लाख कर लेते हैं, 1.5 लाख कर लेते हैं, और तत्वता 16 माला भी नहीं करते। अगर सही स्टैंडर्ड देखा जाए तो नहीं कर पाते। बोल कर उच्चारण करके करना चाहिए, और यह कला सीखने के लिए मेढक को अपना गुरु समझना चाहिए। इस तरह से बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से बोलना चाहिए। एक बार की घटना है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास उनके कुछ शिष्य बैठे थे, और कोई एक शिष्य आया, वो ध्यान नहीं दे रहा था, वो खूब जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे जप रहा था। तो कुछ उनके शिष्य लोग थोड़ा इशारा कर रहे थे, अरे गुरु जी के सामने बैठे हो, और धीरे धीरे करो धीरे धीरे करो। तब तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज देख लिए, और उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई इसे डिस्टर्बेंस नहीं, तुम चलते रहो, ये दिव्य शब्द है, इससे कोई उद्वेग क्या होगा, भगवान नाम सुन करके प्रसन्नता होनी चाहिए। और वास्तव में जप ही एक ऐसी भक्ति है जिससे यह पता चलेगा कि हाँ वास्तव में भक्ति हो रही है। ये और भक्ति तो दूसरे के साथ में पढ़ करके भी करनी पड़ती है, लेकिन जप ऐसा साधन है कि हमारा जब मन लगेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसलिए यही स्टैंडर्ड है, जप हो रहा है तब ठीक, यह पहचान से प्रतिदिन जप अपना अवश्य करना चाहिए, ये प्रमाण है। और जहां तक कथा सुनने की बात है, तो हो सकता है हम दूसरे के संकोच से भी बैठ जाए कथा में, ये भी हो सकता है, भाई गुरु जी क्या कहेंगे कि वो कथा में नहीं आया, चाहे वो अमुक क्या कहेंगे। कीर्तन में भी अब देह लेकर के कभी कभी परवश खड़े रहना पड़ता है, नहीं मंगला आरती में आएंगे तो लोग बुरा भला कहेंगे। इसलिए जप जो है वो अपना स्वच्छंद भजन है। अगर जप हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप कोई भी भक्ति कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक हो रहा है। उस समय कीर्तन में खड़े हैं वो ठीक हो रहा है, भागवत सुन रहे हैं ठीक हो रहा है। यदि जप नहीं हो रहा है तो यह सोचनीय बात है। वैसे श्रवण भी अपने आप में पूर्ण भक्ति है, अपनी जगह पर पूर्ण है, लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है कि कलयुग में भगवान नाम ही एकमात्र साधन है, इसलिए कोई भी भजन उससे युक्त होना चाहिए, तब वो पूर्ण फल देगा। कोई भी भजन नाम जप से युक्त होना चाहिए।
अगर वो युक्त नहीं है तो पूर्ण फल नहीं देगा। जप करना जरूरी है, बोलना चाहिए। तो मेढक बोलने लगते हैं, जैसे बच्चे गुरु के द्वारा जगाने पर बोलने लगते हैं। यह है उपादेय शिक्षा, और पुनः है शिक्षा दे रहे हैं। आसन उत्पथ बाहिन्या क्षुद्र नद्य नुसुष्यति पुंसो जथा स्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदा। वर्षा काल में जो क्षुद्र नदियां होती हैं, छोटी छोटी नदियां, और उनमें इतना पानी आता है कि पानी को तो अटवा सकती नहीं है, थोड़ा पानी भी उनके लिए काफी हो जाता है। तो अपने तटों में उस पानी को न बांध करके वे पूरा गांव डुबाने लगती। क्षुद्र नदी भर चली तोराई जस थोरे उधन खल बौराई। छोटी छोटी नदियों में बाढ़ देगी। गंगा जी इतनी बड़ी नदी है, उनमें बाढ़ जब आती है तो धीरे धीरे और बहुत ज्यादा नहीं फैलती, लेकिन छोटी छोटी नदियों के तट पर बसे हुए गांव में तबाही हो जाती है। बरसाती नदियां कही जाती है, और बाद में अनुसूष्यति, बस कार्तिक के बाद सुख साकर खत्म, इसके बाद एक बूंद पानी नहीं, और बरसात में खूब उमड़ती है। इनको उत्पथ वाहिन क्षुद्र नदियां, छोटी छोटी नदियां वर्षा काल में अधिक वर्षा होने से उत्पथ वाहिनी अपना मार्ग छोड़ करके इधर उधर बहने लगती, क्योंकि मार्ग उतना चौड़ा है नहीं, तो इधर उधर बहने लगती है। कहीं खेत डुबा देना, कहीं गांव डुबा देना, इस तरह तबाह करना। और कार्तिक अगहन आते ही सूख जा। ठीक वैसे ही जैसे कोई अस्वतंत्र पुरुष है, अस्वतंत्र का मतलब इंद्रियों का गुलाम, इंद्रिय तृप्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति अगर जवान होता है तो जवानी का सही सही उपयोग नहीं करता है, और उसके पास धन या संपत्ति, पद और धन होता है तो वो उसका गलत उपयोग करता है। कुछ ही दिन में जवानी खत्म हो जाती है, शरीर पचक जाता है, धन खत्म हो जाता है। धन कभी कभी मिलता है, बस को खाकर जुआ खेलकर पी पा करके खत्म, बस ऐसा करते ऐसे। और जो वास्तव में जितेंद्रिय पुरुष होते हैं, जो इंद्रियों के अधीन नहीं है, उनके पास धन सालों भर बना रहता है, जीवन भर बना रहता है। लेकिन इंद्रियों के परतंत्र रहने वाला व्यक्ति तो इंद्रियों के लिए उसको खर्च करके ही छोड़ेगा। देहस्य संपदा, देह की संपत्ति क्या है? विद्या और जौवन। द्रविण संपदा, द्रविण संपदा का मतलब है पांच छह गांव का मालिक है। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं पंचसठ ग्राम आधिपत्यम। ये थोड़ा सा धन है और अपने को समझता है बहुत धन है, बहुत धन है, बस दो चार साल में खत्म करके इसके बाद बाबा जी खत्म। छोटी छोटी नदियों जैसा नहीं होना चाहिए, गंगा जी के समान सालों भर पानी बना रहना चाहिए। बस महीना मिला और दो चार दिन में खत्म करके फिर ऋण लेना चालू कर, गलत काम करने। तो जो वेदों की मर्यादा में नहीं रहते हैं, शास्त्र की मर्यादा में, वो उत्पथ गामी नदियों के समान है। तो जवानी उमरी तो गलत काम करना चालू किए। ऐसा नहीं कि जवान हुए तो अब हरे कृष्ण जपना चालू करें, जवानी को अस्थिर रखना चाहिए, वो तो भगवत भजन से अस्थिर रहती है। और धन तो क्षुद्र नदियों से ये है शिक्षा मिलती। हरिता हरभि सस्पर इंद्र गोपश्च लोहिता उच्छलेन्द्र कृता छाया नृणाम श्री भूर भूर। पृथ्वी वर्षा काल में कहीं कहीं हरी लगती है, हरे वर्ण की, कहीं लाल और कहीं उजला लगती। कैसे? हरिता हरभि सस्प, सस्प मतलब घास, दूब, कहीं कहीं हरी हरी दूब छा जाती है तो उसके कारण हरिता, पृथ्वी हरित वर्ण की लगती वहां। और कहीं इंद्र गोपश्च लोहिता, इंद्र गोप कुछ कीड़े होते हैं, लाल लाल, लाल हाथी कहते हैं इंद्र गोप, तो उनके कारण कहीं कहीं पृथ्वी लाल लगती है। और उच्छलिंद्र कृत छाया, और कहीं कहीं बरसाती छत्ता उगते हैं, बरसाती छत्ता पृथ्वी से उजला उजला उगते हैं। उसको क्या कहते हैं है? उसको हम लोग तो बरसाती छत्ता कहते हैं। छोटे छोटे होते हैं और बहुत कोमल, हाथ से पकड़ते हैं टूट जाते हैं, लेकिन छत्ता जैसा उगते हैं। हाँ, तो उनके कारण पृथ्वी श्वेत वर्ण की लगती है, कहीं हरित वर्ण की, कहीं लाल वर्ण की लोहिता, और कहीं श्वेत वर्ण की, वैसे लगती है जैसे पृथ्वी उस समय ऐसी शोभा देती है जैसे मनुष्यों की श्री नृणाम श्री रिव भूर अभूत। श्री का क्या अर्थ हुआ? तो एक जगह अर्थ किया गया कि पृथ्वी वैसी लगती है जैसे राजा की सेना, राजा की सेना में कोई कोई सिपाही लाल पहनते हैं, कहीं लाल लगती है सेना और कहीं उजली लगती है, कहीं हरित वर्ण की। आजकल के सैनिकों को ज्यादा हरे रंग का पोशाक पहनाया जाता है। इस तरह एक राजा की सेना की तरह पृथ्वी लगती है उस समय। और क्षेत्राणि शस्य संपद विकर्ष काणा मुदम ददु मानिना मनुतापन आय दैवाधीनम अजानताम। वर्षा काल में जो कृषक खेती बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो दैव जोग से कभी कभी बहुत अच्छी फसल हो जाती है खेत में, पानी वर्षा और जोते और छीट दिए कोई अन्न बो दिए तो कभी कभी बहुत अच्छा हो जाता है दैव जोग से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लापरवाही करते हैं, खेती नहीं करते हैं कि अरे नहीं होगा, अकाल पड़ जाएगा, क्या करें, हमारा बीज भी बर्बाद होगा, इसलिए हम नहीं करें। लेकिन क्षेत्राणि शस्य संपद भी कुछ कृषकों के खेत फसल से भर करके उसको बहुत मुदम ददु सुख देते हैं, लेकिन जो मानी लोग होते हैं कि हम खेती नहीं करेंगे, खेती में कुछ हो नहीं रहा है, तो उन लोगों को उन खेतों को देखकर अनुताप होता है, क्योंकि खेती दैवाधीनम है, दैव के अधीन है, कभी कभी बहुत अच्छी फसल हो जाती है। तो ये नहीं जानते हैं कि खेती ये दैवाधीनम अजानता, नहीं जानते हैं खेती दैव के अधीन है, इसलिए खेती करनी चाहिए, कभी कभी बहुत अच्छी फसल हो जाती है। अथवा धनिना मनुतापम वे दैवाधीनम अजानता, इसका पाठ भेद है। किसान लोग प्रायः गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके खेतों में बहुत अच्छी फसल होती है तो उस अच्छी फसल को देख करके धनी लोग पश्चाताप करने लगते हैं कि अब ये किसान हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे, अगर ये गरीब रहेंगे तो हमसे ऋण लेंगे, हमारी शरण लेंगे, लेकिन अब तो इनको भगवान ने फसल दे दिया तो अब ये हमारी अधीनता में रहेंगे नहीं। तो धनियों को बड़ा दुख होता है, एक ही फसल एक ही खेत धनी को दुख दे रहा है और उस किसान को सुख दे रहा है, प्राय ऐसे लोग देखे जाते हैं। किसानों के खेत में भरा हुआ फसल देख करके धनी लोग मरने लगते हैं कि अब ये हमारे यहाँ से डेढ़ा बाड़ी नहीं लेगा, मतलब डेढ़ा अन्न है। इधर लोग जानते होंगे एक शेर आप अन्न लिए किसी के यहाँ से तो दो तीन महीना में ही डेढ़ शेर देना होता है, उसको डेढ़ा कहते हैं। लेकिन जब किसान के यहाँ खुद ही घर में अनाज हो गया तो अब उनसे तो डेढ़ा लेगा नहीं, तो उनको दुख होता है। सुखदेव गोस्वामी को सब पता है लोक तत्व, लोक में क्या होता है। और ऐसे ही पूंजीपति लोग धनी धनी लोग कभी नहीं चाहते हैं कि ये लेबर आदि धनी हो जाए, नहीं तो धनी होने पर उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, उनका काम कैसे होगा। इसी तरह से धनी देश नहीं चाहता है कि अफ्रीका इंडिया ये सब गरीब देश धनी हो जाए, जानते हैं कि ये धनी हो जाएंगे तो फिर हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, हमारा मार्केट फेल हो जाएगा। ये पूरे वर्ल्ड में यह सिद्धांत लागू है, इसलिए वे ऐसी सरकार को योजना बताते हैं जिससे यहाँ गरीबी छाई रहे, पूरा खेत उनको दे दीजिए वो खेती कराएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। पूरा दे दीजिए, और इसके बाद मनमाना दान लेना, ये करना वो करना। यहाँ अंग्रेज जब प्रथम बार आए तो ये लोग चाय फ्री दे रहे थे और चीनी का दान दे रहे थे, चीनी खरीदने के लिए दान देते थे। लोग बताते हैं हम लोगों से, वो लोग चाय की खेती कर रहे थे और जगहों पर, देखे कि लोग जब पियेंगे नहीं तो ये बिकेगा कैसे। पहले तो फ्री चाय दिए और चीनी खरीदने का दान देते थे, और जब लोग पीने लगे तब उनका व्यापार चमक गया, और अब तो बिना चाय के कोई रह ही नहीं रहा है। ये अंग्रेजों का दिया हुआ चारा है। और शुरू शुरू में कुछ अपनी वस्तुएं बनाते थे और ला करके बहुत सस्ता बेचते थे, लोगों को बड़ा पसंद पड़ता था। धीरे धीरे लोग अपना काम धंधा छोड़ते गए या उत्पादन छोड़ते गए, अंग्रेजों पर डिपेंड करने लगे, और इस तरह से उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया आर्थिक गुलामी हो। इस तरह गुलामी हो गई। आज के युग में तो अब पानी भी अब गुलामी का पीना पड़ता है। अब शीशियों में पानी बंद करके लोग बेच रहे हैं, उतना महंगा डीजल भी नहीं है। हाँ, 1 लीटर पानी 12 रुपए में मिल रहा है, लगभग दुगना दाम हो गया डीजल से। और कहते हैं और सब जगह पानी में बैक्टीरिया है, वो पीने से स्वास्थ्य खराब होता है, ये होता है, और वही बैकुंठ से पानी लाए हैं पीने के लिए। और ये सब लोग जो पानी पी रहे हैं गांव में अभी भी शुद्ध, उनसे भी मजबूत नहीं है शहर वाले, जैसे बोतलों का सड़ा हुआ पानी पीने वाले, वो लोग मजबूत नहीं है। लेकिन यह है धनिनाम उपतापम अनुताप, इस तरह धानी लोग सबको अपने पंजे में रखना चाहते हैं। हम पानी दें तो पियो, कुछ काल के बाद उस पानी का दाम यदि 100 रुपया बोतल कर दे तभी पीना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा पानी वो कहेंगे कि खराब हो गया है, सारा पानी खराब हो चुका है, इसलिए अब 100 रुपया चाहे 200 रुपये बोतल देगा, पीजिए। और डॉक्टर उनके द्वारा घूस लेकर के लिख देते हैं कि और सब जगह पानी खराब हो गया है। धानी लोग इस तरह से कंट्रोल करते हैं, और सब खराब हो गया है हमारा लोग। मैं गया था अफ्रीका, वहां देखा कि वहां की कोई भी उत्पादित वस्तु नहीं बिक रही है, वहां का कोई सामान नहीं। इंडिया से आया है तो जर्मनी से आया है तो इंग्लैंड से आया है, सब सामान, ताला भी लोटा भी, जो कुछ देख रहे तो उस पर मेड इन इंग्लैंड, मेड इन जर्मनी, मेड इन इंडिया। मैं पूछा कि यहाँ के लोग कुछ बनाते नहीं है क्या, वो लोग कहते नहीं यहाँ के लोग बनाते नहीं, और बाहर वाले मनमाना दाम लेते हैं, 1 रुपये का सामान 100 रुपये में भी बेचते हैं, वो बेचारे ले रहे हैं। महात्मा गांधी इसी से वहां से आंदोलन चालू किए थे साउथ अफ्रीका से, लेकिन उनका किया हुआ काम आज कोई समझ नहीं रहा है, मनमाना है चल रहा है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी एक बहुत भारी क्रांतिकारी भाषण कर रहे हैं, इस तरह धनी लोग किसानों के फसल भरे हुए खेत को देखकर जलते हैं कि अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहे। बताइए किसान बेचारे अगर समृद्ध हों तो कितना अच्छा है, लेकिन जो जीवन पैदा कर रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, दूध पैदा कर रहे हैं, अगर वे थोड़ा समृद्ध होने लगे तो धनियों को चिंता होने लगे। यह है प्रकृति, मानव समाज। किसानों के भरे हुए लहलहाते हुए खेत को देखकर किसानों को प्रसन्नता होती है, और वहीं जब धनी लोग घूमने जाते हैं तो उनको भूख लगती है। ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते जलस्थलौ कसह सर्वे नव बारी निषेवया अभिभ्रम रुचिरम रूपम जथा हरि निषेवया हरि निषेवया श्री कृष्ण सेवया। वर्षा काल में जब नया नया पानी बरसता है तो उस पानी का सेवन करके पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं, चाहे जल में रहें या स्थल पर रहें, उनका रूप बड़ा सुंदर लगता है। जैसे पीला पीला मेढक देखते हैं ना, उस समय नया जल का सेवन करके और बड़े सुंदर लगते हैं, और वृक्ष भी बड़े सुंदर हो जाते हैं पानी पी पी करके, और हरा पत्ता आदि से युक्त हो जाते हैं, घास या कोई दूसरे जीव भी बड़े सुंदर लगने लगते हैं। नौ बारी निशे वया और विविध रूप धारण करते हैं, उसी तरह से उनकी शोभा होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो जाने पर जीव की शोभा बढ़ जाती है, क्योंकि भक्ति जीव का स्वरूप है और आनंदमय है। भगवान का भक्त होते ही जीव को सुख मिलता है और उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में लिखे हैं कि भक्त वास्तव में सुंदर लगते हैं, और विदेशों के लिए वे कह रहे हैं कि वहां पर जो केश बढ़ाए रहते हैं वे हिप्पी देखने में बहुत खराब लगते हैं, लेकिन जब वे छौर करा लेते हैं, तिलक कर लेते हैं, तो उनकी शोभा बढ़ जाती है। छौर कराए हुए भक्त लोग भी बहुत सुंदर लगते हैं, बल्कि जिस दिन छौर वे करते हैं, जिस दिन छौर शेविंग करते हैं, तो उस दिन और सुंदर लगते हैं, क्योंकि भक्ति यह स्वरूप है जीव का और आनंदमय है। जथा हरि निसेवया, जब ही व्यक्ति भगवान को समर्पण करता है, जप करता है, प्रणाम करता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है। भक्ति का अर्थ छौर कराना ही नहीं मैं कह रहा हूं यह मतलब विदेशों में प्रभुपाद जी देखे थे कि कोई पहले हिप्पी आया हरे कृष्ण आंदोलन में और छौर करा लिया तो सुंदर लगने लगा, लेकिन चाहे आदमी केश रखे या जैसा भी वस्त्र पहने, लेकिन वह भगवान का भक्त हो जाता है तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, लोक में उसका सम्मान भी बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, उसका सौंदर्य बढ़ता है, और प्लस उसका सुख बढ़ जाता है, वह आनंद में रहता है। कई लोग अपना अनुभव बताते हैं कि हम जब हरे कृष्ण आंदोलन में आए, हम जब कृष्ण की भक्ति स्वीकार किए तो हम सुखी हो गए, हमको अब दुख नहीं, अपना सेटिस्फैक्शन व्यक्त करते हैं। और इस तरह अपना आनंद व्यक्त करना चाहिए, जब हम अपना आनंद व्यक्त करेंगे तो दूसरे लोग लुब्ध होकर के भक्त बनेंगे भगवान के, तो ये तो बड़ा सुखी हो गया, ये तो आनंद में रह रहा है और अच्छा लगता है। तो वर्षा काल में नवजल का सेवन करके जल पर रहने वाले या स्थल पर रहने वाले जीव सब सुखी हो जाते हैं। अभिव्रण रुचिरम रूपम, उनका रूप बड़ा अच्छा लगता है। जथा हरि निसेवया, जैसे भगवान का भजन करके जीव सुंदर हो जाता है किसी भी अवस्था में, चाहे वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, जो भगवान का भक्त हो जाता है वो सुंदर लगने लगता है। और अब सुखदेव गोस्वामी ये बात बोल रहे हैं, उनकी दृष्टि में तो वो सुंदर है। जथा हरि निसेवया, भगवान हरि की सेवा करके, उनकी भक्ति करके जीव सुंदर लगने लगता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा, ये सुंदरता बढ़ती है। सरित भी संगतः सिंधु चुक्षुभे स्वस्नोर्मिमान, अपक्व योगिनश्चित्तम कामाक्तम गुणयुग जथा। अभी तो बहुत लंबा प्रसंग है, इसलिए मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण। अभी कुछ वर्षा का वर्णन है, इसके बाद शरद काल का वर्णन आएगा, बहुत सुंदर वर्णन। इसके बाद वेणु गीत, शरद काल की लीला का वर्णन वेणु गीत में किया जाएगा। कुंज बिहारी जय राधा, कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन यशोदन यशोदनन्दन व्रज जन रंजन, यमुन तीरावन चारी, यमुन तीरावन चारी, यमुन तीरावन चारी।
गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा रसी हरि राधा रसी हरि राधे जय
चुक्षुभे स्वसनोर्मिमान अपक्व योगिनः चित्तं कामाप्तं गुणयुक्ते यथा सरिभिः संगतः सिन्धुः चुक्षुभे श्वसनोर्मिमान् अपक्वयोगिनश्चित्तं कामाक्तं गुणयुग्यथा गिरयो वर्षधाराभिः हन्यमानान् विव्यथुः अभिभूयमाना व्यसनैः यथा धोक्षजच्चेतसः मार्गा बभूवुः सन्दिग्धः तृणैच्छन्नाय संस्कृतः नाभ्यस्यमाना श्रुतयो द्विजैः कालहता इव लोकबन्धुषु मेघेषु विद्युतश्चल सौहृदः
योगी का अपक योगी का कामाक्त या गुणयुक चित्त क्षुभित हो जाता है। तो दो तरह के योगी इस संसार में होते हैं। एक है योगाभ्यास रत रहते हैं, अभी वो अपने लक्ष्य पर पहुंचे नहीं होते हैं लेकिन योग में लगे रहते हैं, जैसे हम लोग हैं। हम लोग योगाभ्यास में हैं। योगाभ्यास मतलब भक्ति योग, भगवान की भक्ति में लगे हुए। भगवान ने गीता में योग का अर्थ भक्ति किया है और अर्जुन को कहता हूँ तस्मात योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो और मद भक्त भव कहते हैं। इसका अर्थ दोनों का एक ही अर्थ हुआ। ये अर्जुन पूछ सकते थे कि योगी बने कि आपका भक्त बने। आप एक बार कहते हैं योगी भव और एक बार कहते हैं मद भक्त भव। भगवान ने कहा दोनों का अर्थ एक ही है, मेरा भक्त बनो। तो योग का अर्थ है भक्ति होता है। तो कुछ ऐसे योगी होते हैं वे लगे हुए हैं भक्ति में, अपनी सिद्धि को प्राप्त नहीं किए हैं, तो उनको अपक्व योगी कहते हैं। पक्का योगी नहीं। पक्का का अर्थ जैसे फल पक जाता है या घड़ा पक जाता है, तो पक का वह अर्थ हुआ बिल्कुल परिपूर्ण सिद्धि पर है। अब संसार उसे कभी भी खींच नहीं सकता उसके चित्त को। उसका मन भगवान में रम जाता है, उसकी इंद्रियां भगवान में रम जाती है, तो उसको पक्व योगी कहते हैं। तो बड़ा प्रसिद्ध शब्द है हिंदी में पक्का, और विदेशी भक्त भी जानते हैं पक्का शब्द। खास करके किसी को आप वादा देते हैं तो लोग कहते हैं बिल्कुल पक्का, पक्का नक्की हो गया। तो पक्का योगी असली योगी, और अपक योगी का मतलब होता है अपूर्ण योगी, अभी पूर्ण सिद्धि पर नहीं पहुंचा है लेकिन योगाभ्यास में लगा हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। यह निश्चित है जैसे वृक्ष में फल लगते हैं तो शुरू में ही नहीं पक जाते हैं, उनके पकने में देर लगती है। तो वृक्ष की सेवा की जाती है लेकिन कुछ काल के बाद फल पकते हैं।
आसन रखा हुआ है निपाई प्रभु जी के लिए आसन दे देना चाहिए, आसन यहाँ रखा है आसन क्या है
हरे कृष्ण।